ओम शांति, ओम शांति। आज है रक्षाबंधन का पावन त्योहार। सबसे बड़ा त्योहार तो शिव जयंती है, क्योंकि शिव बाबा आकर के हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं, अलौकिक जन्म लेते हैं और उसके बाद दूसरा पावन त्योहार है रक्षाबंधन। जब शिव बाबा आते हैं तो सबसे पहले पहली प्रतिज्ञा हम बच्चों से क्या कराते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं और इसी पवित्रता का ही यादगार रक्षाबंधन है। वैसे बंधन किसको पसंद नहीं है, लेकिन ये प्यारा बंधन है। भगवान के प्यार में हम बंध जाते हैं और जो भगवान हमें कहते हैं, श्रीमत देते हैं, उस प्यार के खातिर सब पालन करते हैं और उनको ही याद भी करते हैं, जिससे बाबा कहते हैं तुम्हारे सब विकर्म विनाश होते हैं। तो ये संगम युग अति प्यारा युग है। आज बाबा ने कहा है कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, वास्तव में देखा जाए धीरे धीरे उतरती कला के युग है, लेकिन चढ़ने का समय केवल अभी ही है। इसलिए बाबा कहते अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इसी संगम युग पर ही बाबा आकर हमें श्रीमत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं, रंक से राव बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। ये भगवान के सिवाय तो और कोई कर ही नहीं सकता है। और इतना धनवान, इतना माला माल बनाते हैं, जो बाबा कहते हैं द्वापर युग में वो जो भगवान ने हमें दिया सतयुग त्रेता का, वो द्वापर में हम उनके मंदिर बनाकर उनकी कितनी पूजा करते हैं, ये सम्मान देते हैं उनको, क्योंकि भगवान ने हमको इतना दिया। तो संगम युग का भी उतना ही महत्व है जितना ही बाबा का महत्व है। तो आज की मुरली में कई गुह्य राज भी हैं, वो भी हम सुनेंगे और फिर मुरली के बाद रक्षाबंधन के निमित्त आज बाबा को भोग भी लगाएंगे। हमारी भट्टी वालों के लिए तो कितनी खुशी की बात है, तीनों दिन भोग लग रहा है। हाँ भट्टी वाले, परसों भी भोग लगा, कल भी लगा और आज भी भोग है। तो यही उनको हम कह रहे थे, देखो तीनों दिन भोग, तीनों दिन कुछ न कुछ मीठा खाने को मिलता है। हाँ तो ये भी कितनी खुशी की बात है, कितना हम कहेंगे भाग्य है जो आप इन्हीं दिनों में आए हो। तो बहुत अच्छा है और इतने अच्छे अच्छे क्लासेस मिल रहे हैं, गुहिया गुहिया क्लासेस मिल रहे हैं। आज भी रक्षाबंधन के निमित्त भी आप सबको बहुत सुंदर बातें मिलेगी और भी फिर बताएंगे आपको। लेकिन अभी हम बाबा की मुरली सुनेंगे, फिर बाबा से शक्ति लेंगे। हाँ बाबा बच्चों को कैसे वतन में फिर से भेजेंगे और बाबा बच्चों को राखी बांधेंगे, है ना। तो राखी तो कल मिल गई ना भट्टी वालों को, सबको मिल गई राखी। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज 28/8/2026 है। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। कितने राज है इस ड्रामा में, कई राज ऐसे गुप्त है जो दुनिया जो बिल्कुल नहीं जानती, इसीलिए उनके मन में प्रश्न ही उत्पन्न होते। सबसे बड़ा गुप्त राज की भगवान कौन है यही किसको पता नहीं, इसलिए ढूंढ रहे हैं। तो बाबा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। केवल यही युग चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन करता है? सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन करता है? दुनिया में कई प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं ना, कितनी सेवा करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे ऊंची सेवा किसको कहेंगे और कौन वो ऊंची सेवा करता है? उत्तर है, सबसे ऊंची सेवा कौन सी है? भारत को स्वर्ग बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। और सेवाएं तो बहुत कर सकते हैं, है ना, मंदिर बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, प्याऊ बनाएंगे, सबको थोड़ा सुख मिल जाए उनको। लेकिन बाबा कहते हैं भारत को ही स्वर्ग बनाना, रंक को एकदम राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये सबसे उत्तम सेवा है। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। बाप ने ऐसी महान सेवा की है तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। क्या इज्जत की भगवान की हमने, इतनी सेवा बाबा ने हमारी की तो उसकी इज्जत हमने क्या उनको दी। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये सबसे बड़ी इज्जत हम भगवान को देते हैं। और कैसा मंदिर, जिसको कितना लूटा गया। बाबा ने आज राज बताया, लक्ष्मी नारायण के मंदिर को नहीं लूटा, लेकिन शिव के मंदिर को लूटा। शिव बाबा ने बच्चों को इतना सम्मान दिया जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर को नहीं लूटा। परंतु शिव बाबा तो दाता है, उसके मंदिर को लूटा और कितने हीरे जवाहरात ले गए। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? जिस दिन का रास्ता तकते थे और उसके थे मोहताज, ऐसा गीत है। तो इसी दिन का रास्ता तकते थे कि कब भगवान आकर हमें पतित से पावन, रंग से राव बनाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देती ना आत्मा, तो गुप्त है शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है। इनकॉग्निटो माना गुप्त, गुप्त है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। कई आत्मा को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, कि अत्य आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देती, लेकिन वो तो गुप्त है, इन आँखों से कैसे देख सकते हैं, वो इनकॉग्निटो है, ये शरीर तो साकार है, दिखाई देता है और आत्मा उसमें ढकी हुई है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्मा शरीर में प्रवेश हो गई तो जैसे गुप्त हो गई, पता ही नहीं चला किसको कैसे आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ, आत्माओं की निराकारी दुनिया है। अब वहाँ गुप्त की बात नहीं है, आत्माएं तो सब आत्माएं वहां होंगी, तब वह गुप्त है ये तो कहने में नहीं आएगा ना, क्योंकि है ही आत्माओं की दुनिया। यहाँ ये शरीर है तो आत्मा के लिए कहेंगे गुप्त है। तो बाबा कहते वहां गुप्त की बात ही नहीं है, परम धाम में परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। परे ते परे माना परम धाम, परे ते परे धाम, परम पिता परमात्मा उस धाम में रहते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो मुझे भी गुप्त आना पड़े। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा बाबा को ही पता नहीं चला इतना गुप्त आ गए। मुझे भी तुम जैसे गुप्त हो मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में तो नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है, मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। भले शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं लेकिन शिव बाबा का नाम नहीं बदलता है। हाँ, जिसके तन में आते हैं उनका नाम शिव बाबा जरूर बदलते हैं, तो उनका नाम नहीं, मेरा नाम नहीं बदलता है, इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। ब्रह्मा भी शब्द जो है वो कोई आत्मा का नाम नहीं है, वो तो शरीर का है ना, बाबा शरीर को ये नाम देते हैं ना ब्रह्मा। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। दादा लेखराज से ब्रह्मा बन गया, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को ये ज्ञान अब मिल रहा है, कौन सा ज्ञान, कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। ये ज्ञान अभी हम बच्चों को मिल रहा है, आत्मा है इनकॉग्निटो यानी गुप्त, शरीर है कॉग्निटो माना प्रत्यक्ष, मैं भी अशरीरी हूँ, बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इनकॉग्निटो शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, तो बाप आते हैं किस लिए, भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। अभी तो फिर भी भारत का नाम बहुत ऊंचा हो रहा है, लेकिन जब अंग्रेजों का जमाना था उस समय तो भारत की क्या स्थिति थी, एकदम कंगाल बना दिया था अंग्रेजों ने। और वो क्या कहते थे भारत के लिए, ये तो सपेरों का देश है, हाँ ये तो गरीबों का देश है, क्या क्या नाम देते थे भारत को। तो इसलिए जब भारत के भी जाते थे विदेश में तो कहते हैं भारत से आए, अरे वो तो सपेरों का देश है, सांपों का देश है, वहाँ तो क्या क्या ऐसी बातें भारत के लिए कहते थे। अभी नहीं कहते हैं, पहले तो बहुत कहते थे। तो भारत के लिए तो जैसे कि कोई प्यार भी नहीं था, अभी तो कितना प्यार है भारत के लिए। तो बाबा कहते हैं सब जानते हैं, तो बाबा कहे तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई ये पता नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। ये किसको पता नहीं है कि भारत उस समय और उसमें और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म देवी देवताओं का था। ये किसको पता नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, क्या समझते हो कि हमारा भारत बहुत साहूकार था। अभी भी कई देश हैं जो भारत को बहुत गरीब मानते हैं, बहुत गरीब मानते हैं और कहते हैं, यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे आपका कैसा देश है, क्या क्या इस देश में है। तो बिल्कुल जो कंगाली की बातें ना वो ही सुनाते हैं भारत की। पैसे तो ऐसे ही था ना, अभी मुंबई से आते हैं, जब विदेश से आते हैं भारत के एयरपोर्ट पर ही उतरते हैं तो सबसे पहले उनको झुग्गी झोपड़ियां दिखाई देती है ना। मुंबई में तो ऐसे ही है ना, वो झुग्गी झोप अभी तो सब धीरे धीरे निकाल रहे हैं, लेकिन उस समय तो यही था। तो कहेंगे ये तो झुग्गी झोपड़ियों का ही देश है, क्योंकि इतनी सारी झुग्गी झोपड़ियां यहाँ होती थी। तो बाबा कहते हैं, और इसीलिए कई जब बाबा के बच्चे विदेश से यहाँ आते हैं तो विदेशी लोग उनको कहते थे, अभी कम है लेकिन पहले बहुत था, कि विदेश वाले जब भारत आते थे बाबा के बच्चे तो विदेश वाले उनको कहते थे आप भारत में जाते हो, क्या मिलेगा आपको भारत में, वो तो गरीब देश है। अरे हमारे देश में तो कितनी समृद्धि, तो भारत में क्यों जाते हो। तो वो बहुत सुंदर जवाब देते थे, भारत में हम क्यों जाते हैं क्योंकि भारत में जो मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है, ऐसे कहते थे। भारत में हमको भगवान मिलता है, ये वो कहते थे। तो क्या भगवान मिलता है तुमको भारत में, तो वो समझते थे ये लोग पागल हो गए हैं, भारत में भगवान मिलता है, सही भगवान मिलता है क्या, वो नहीं समझते थे। लेकिन अभी तो बहुत रिस्पेक्ट है भारत के लिए। तो बाबा कहते हैं भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था, फिर वो कहाँ चला गया ये कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचयिता रचना का ज्ञान नहीं है। तो ऋषि मुनि तो कहते थे हम नहीं जानते, लेकिन जो देवी देवताएं थे उनको भी ये ज्ञान नहीं था कि हम सतयुग में देवी देवताओं को रचयिता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अगर उनको ये ज्ञान होता कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख ही न हो। इसीलिए ड्रामा अनुसार ये भी एक कल्याण है कि देवताओं को ये पता ही नहीं है कि हम धीरे धीरे नीचे उतरेंगे, तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता ही लग जाए कि हम नीचे उतरेंगे। अगर राजा को पता चल जाए मेरी राजाई अभी जाने वाली है तो वो राजाई का भी क्या सुख लेगा, तो चिंता ही लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, अभी हमको कौन सी चिंता लगी हुई है, देवताओं को कोई चिंता नहीं होगी, भले नीचे गिरेंगे धीरे धीरे, पर तुमको चिंता कौन सी लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहां से फिर कैसे सुख धाम में आई, ये भी ज्ञान है। निराकारी दुनिया से सुख धाम में कैसे आई वो भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है ये भी तुम जानते हो, कितने ऊंचे थे, फिर अभी कितने नीचे गिरे हैं, तो ये बीच में क्या हुआ दोनों के उत्थान और फिर पतन के बीच में, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में बाबा कहते हैं सतयुग में सब तो नहीं जानेंगे, सतयुग में ये सब बातें नहीं जानेंगे। ड्रामा अनुसार हरेक एक्टर नंबर वार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती भगवान को गरीब निवास कहते हैं। तो सबसे गरीब भारत बन गया, तो गरीब निवास भारत नहीं आते हैं, पर वो गरीब निवास है कौन पता नहीं, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वो दिन आया आज, ये सब है भक्ति, भक्ति मार्ग के गीत है। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं ये भी समझा है। कैसे ले जाते हैं, कब ले जाते हैं दुर्गति से सदगति में, ये भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं ऐसे भी नहीं कहेंगे, शिव जयंती मनाना माना शिव आते हैं, पर ऐसे नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, शिव बाबा श्री कृष्ण के तन में नहीं आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, जो पहले नंबर में था वो अब अंत में है। तत्त्वम, तुम बच्चे भी पहले नंबर में थे फिर अभी अंत में हो। तत्त्वम, मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ। क्या बतलाता हूँ कि तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने आप को नहीं समझते, क्योंकि क्यों नहीं समझ रहे अपने आप को, सनातन धर्म के हैं ये तो कहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हम देवता धर्म के हैं ये कोई नहीं समझ रहा अपने आप को। क्यों? क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। देवताएं तो सतयुग में थे, वो तो लाखों साल पहले थे, तो हम थोड़ी कभी ऐसे थे, तो सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है, 5000 साल ही है बस, और कहाँ वो लाखों साल कह देते हैं उसकी वेट में, तो वास्तव में हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। उसमें भी कोई धर्म की तो 500 साल ही आयु है, अभी सिख धर्म को तो 550 साल ही हुए है ना गुरु नानक के आए हुए, फिर कोई की 2500 वर्ष हिस्ट्री है, बुद्धिज्म और ये कौन जो इस्लामिज्म या अब्राहम आए 2500 साल पहले ही दिखाते हैं, और फिर क्रिश्चियनिटी 2000 साल, तो बाबा कहते कोई की 500 साल की है कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। अब तुम्हारी जो हिस्ट्री है वो 5000 वर्ष की है, सबसे पुरानी हिस्ट्री। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है, देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। और किसी धर्म के लिए ऐसे नहीं कहते, लेकिन देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। पहले पहले कैसे कन्वर्ट हो गए, अपने को हिंदू कह दिया, यही कन्वर्ट हो गए ना, कहाँ देवता धर्म और कहाँ अपने को हिंदू कह रहे हैं, फिर और धर्मों में भी चले गए। तो ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे, पहले और धर्मों में चले गए फिर वापस आ जाएंगे, देवता धर्म को मानेंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होने चाहिए, स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं होंगे, होंगे जरूर, परंतु अभी नहीं है, पर फिर से होंगे जरूर। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इसमें इससे सिद्ध होता है हम बाप से वर्षा लेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। अगर वो ऐसे समझता है ना कि हम क्यों नहीं वर्षा लेंगे, हम भी सतयुग में जाएंगे, हम भी देवता बनेंगे, इसका मतलब वो हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो तो आएंगे ही नहीं, कहेंगे पराए धर्म में हम क्यों जाएं, है ना भाई, हम तो क्रिश्चियन धर्म के, इनका तो हिंदू धर्म है, हम क्यों जाएं। तो बाबा कहते परंतु जो इस धर्म के होंगे, भले कहीं किसी धर्म में भी कन्वर्ट हो गए हम, वो वापस अपने देवी देवता धर्म को समझेंगे। तो वो कहेंगे हम पराए धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख था, सोने के महल थे, सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं है। मोहम्मद गजनवी ने कोई एक बार नहीं लूटा उस मंदिर को, एक बार आया तो उसने तो जो थोड़ा बहुत लूटा, लेकिन बहुत कुछ था, तो दोबारा आया 17 बार, कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर लूटा। तो आखिर वो जो शिवलिंग था वो तो कोहिनूर हीरा था, और उसको उसका कोई नीचे बेस भी नहीं था, कैसे खड़ा था। तो आखिर उन्होंने ढूंढ लिया ये कैसे खड़ा है बिना बेस के, तो पता चला है कोई मैग्नेटिक पुल्स है जो उस कोहिनूर को ऊपर खड़ा किया है, और उसको तोड़ा, तोड़ करके वो मैग्नेट्स जो थे उसको निकाला। बताओ कितना 1000 साल पहले आकर लूटा, तो बनाया कितना पहले होगा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख था, सोने के महल थे, सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं है। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे, बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी, है ना, कितना ऊंचा मंदिर उनका बनाया, ये कितनी ऊंची इज्जत रखी उनकी। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है ना। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म किसने किए, सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं, इसलिए उनकी इतनी इज्जत, जो कितने उनके मंदिर बनाते हैं। पतित पावन बाप ही सबसे अच्छे कर्म करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा तो बेहद का बाप ही आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। अभी तो क्या हालत है, उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते हैं। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट के ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं। राजाएं भक्ति मार्ग में इतने धनवान थे तो सतयुग में कितने धनवान होंगे। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी तो नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं, ऐसे भी होता है। महाराजा की तो इज्जत छोटे छोटे जो राजाएं होंगे वो भी करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है, बाबा बहुत अनुभवी थे, क्योंकि हीरे जवाहरातों के जेवर बेचते थे, तो बाबा की सेल्समैनशिप की जैसे ड्यूटी थी, तो बाबा राजाओं महाराजाओं से मिलते थे। और कैसे बाबा की लौकिक बहू ब्रिजिंद्रा दादी बहुत सुंदर थी, तो उनको सोने के हीरे के जेवर पहना करके ले जाते थे। अब बाबा तो रानियों के महलों में तो नहीं जाएंगे, तो ब्रिजिंद्रा दादी जाती थी, और वो ब्रिजिंद्रा दादी को रानियां देखती थी कि इतना सुंदर ये आपका है, हमको ऐसा चाहिए। तो बाबा बहुत होशियार थे, पहले से ही लेके जाते थे, लेके जाते थे, और उनको पता था कि ये रानियों को पसंद आएगा और वो उनको फटाफट बेच देते थे। और राजाओं को इतना सम्मान था बाबा के लिए, बाबा ने एक बार कहा था कि दरबार राजाओं की लगी तो उसमें जब तक दादा नहीं पहुंचे, ब्रह्मा बाबा वहां पहुंचे नहीं, तब तक दरबार शुरू नहीं की महाराजा ने कि वो लखीराज बाबू आएंगे तब दरबार शुरू करेंगे। ऐसे बाबा का सम्मान होता था राजाओं के दरबार में। तो बाबा कहते हैं, तो और वो बड़ी बात कहते थे, लखीराज आपके अंदर इतनी सभ्यता है, आप तो राजाओं से भी ऊंचे हो, भगवान ने बड़ी भूल कर दी कि आपको एक व्यापारी बनाया और हमको राजा बनाया। क्योंकि बाबा की जो पैरवाइश भी ऐसी थी और चलन भी ऐसी थी, इतने रॉयल थे तो राजाएं भी उनको इतना मान देते थे। तो बाबा कहते हैं, जबकि बाबा तो अनुभवी है ना, यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, तो बाबा तो अभी इसी कलयुगी दुनिया में ही थे ना, तो यहाँ की जो दरबार है वो तो पतित राजाओं की है, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा, राजाओं के महल कैसे होंगे, द्वापर कलयुग में भी इतना अच्छा है तो सतयुग में क्या नहीं होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं, हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे, जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे, वो हमको पहले उनकी पूजा करेंगे, वो हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे, जो जमीन 500 रुपए में ली थी वो आज 5000 में भी नहीं मिलती, अभी तो पता नहीं कितने की हो जाएगी वो, वहां तो धरती का मूल्य ही नहीं होता, फ्री पड़ी है, खाली पड़ी है, जिसको जितनी चाहिए ले वे, जिसको जितनी चाहिए ले ले वे, ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी सतयुग में, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं, अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, हाँ कितनी मेहनत करते हो, हमारे किसान कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है, इतना बेचारे परेशान होते हैं कि बरसात पड़े तो हमने जो बीज डाला है वो फलीभूत हो, सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है, तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हाँ क्या गीत था, हाँ क्या गीत था, बाबा ने क्या बताया, कौन सा गीत, आखिर वो दिन आया आज, तो ये गीत सुनकर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास भी कहते हैं ना, अब अर्थ समझना है कि गरीब निवास का अर्थ है क्या है, किसको साहूकार बनाते हैं, गरीब निवास माना आकर गरीबों को साहूकार बनाते हैं, तो किसको साहूकार बनाते हैं, जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना, हाँ जो बाबा के बनेंगे उनको ही साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे, अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है, कहते हैं बाबा, अब कैसे हम एक सेकंड में बाबा के बन जाते हैं, बाबा को हम क्या कहते हैं, बाबा हम तो आपके हैं, पहले कौन कहता है हम आपके हैं, हम बाबा को कहते हैं हम आपके, या बाबा कहता है बच्चे आप हम हमारे हो, पहले कौन कहता है, पहले हम कहते हैं, हाँ तो कहते हैं बाबा हम आपके हैं, बाबा फिर कहते हैं अच्छा बच्चे तुम फिर विश्व के मालिक हो, अभी हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा हमको विश्व का मालिक बना देते। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। अभी ऐसे नहीं है, अभी तो लड़कियां ज्यादा पसंद करते हैं लोग, क्योंकि लड़के तो वो तो कैसे हो जाते, लेकिन लड़की बहुत काम की होती है, तो बच्ची चाहिए। अभी मैं कहां गई थी बीच में, तो उसको बेटा पैदा हुआ, किसी से मिलने गए थे उनके, तो बेटा पैदा हुआ तो वो तो उसका मुंह बड़ा उदास हो गया। मैंने कहा क्यों उदास हो गया, बेटा पैदा हुआ है? कहा मेरे को तो बेटी चाहिए थी क्योंकि बेटी काम आती है, ये बेटे बेटे काम नहीं आते। सचमुच बुढ़ापे में तो बेटियां जितना काम आती है ना, बेटे इतना काम नहीं आते। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाबा के लिए बच्चा बच्ची नहीं है, सब आत्माएं बच्चे हैं, सब बेटे हैं, क्योंकि बाबा हमको सबको वर्षा देते हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था ये भी कुछ नहीं जानते हैं। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, सबसे पुराना देश, सबसे पुरानी संस्कृति, तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी न हो, अगर लाखों वर्षों से ऐसे दुनिया चलती आई है तो लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाए। भी 5000 साल में इतने हो गए हैं, तो लाखों वर्षों से चलता आता तो कितने मनुष्य हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाए। अब इतने तो है नहीं, अभी कहेंगे 700 करोड़, फिर कहते 800 करोड़, फिर चलो 900 करोड़ भी कह दे कभी, बहुत बढ़ती तो जा रही है, पर कहां तक बढ़ेगी। फिर भी लाखों साल पहले से चला है तो फिर भी उसकी लिमिट तो अभी भी बताते हैं, इतने तो हो है नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो पहले कभी सुनी नहीं, न कोई शास्त्रों से पढ़ी, ये तो वंडरफुल बातें आप लोग सुनाते हो। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है, ये बहुत जन्मों के अंत में अपतित आत्मा है जो सतो प्रधान था ना। बाबा इसके लिए कहते तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है, ये बहुत जन्मों के अंत में अपतित आत्मा है जो सतो प्रधान था, सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है। कौन झूलता है? आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, सुनती आत्मा है पर शरीर झूलता है, हाँ झूमता है। बाबा का ज्ञान सुनकर खुशी होती है, तो शरीर झूलता है क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, 84 जन्म तो 84 माँ बाप मिले होंगे, ये भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है। 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम का भी हिसाब होगा ना, कम से कम जन्म और अधिक से अधिक जन्म, ये भी हिसाब होगा ना। तो बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है तुम्हारे लिए, तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, और मेरे लिए शिव बाबा के लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। फिर कण कण में बस जिधर देखता हूँ तो ही तो कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में कहते हैं श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी है, राधा स्वामी वाले आत्मा को राधा मानते हैं, स्वामी परमात्मा को मानते हैं राधा स्वामी, पर जो राधे पंथी है केवल वो फिर श्री कृष्ण को भी नहीं मानेंगे, राधे 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 बस वही गुनगुन गाते रहते हैं। कहेंगे हम कृष्ण स्वामी और है, वो राधे को मानते, राधे राधे वाले, जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवास होना, भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसीलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, ये ह्यूमन ड्रामा है। ह्यूमन ड्रामा है माना वो तो फिल्म होती है ना, परंतु ये प्रैक्टिकल में नाटक चल रहा है, प्रैक्टिकल में एक्टिंग कर रहे हैं, ये ह्यूमन ड्रामा है। इस ड्रामा जो शूट हुआ वो हूबहू रिपीट होगा, ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, खेल माना खेल, हाँ ड्रामा एक्टिंग चलती है, ड्रामा माना ड्रामा। ये वो होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। हाँ, गरीब निवास श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे, वो तो सजा सजाया मोर मुकुटधारी मोहिनी रूप, क्या नहीं उसके जेवर पहने, ये सब तो गरीब निवास क्या हुआ। श्री कृष्ण तो बहुत धनवान, सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर ही नहीं है, ऐसा गरीब निवास उनको अपना ही शरीर नहीं है। आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, वो भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। लौकिक पहले पढ़ाई पढ़ी, फिर अच्छा जॉब मिला, या डॉक्टर वकील इंजीनियर बने, फिर कमाते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, हाँ जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं, क्या नहीं, कल भी बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा, श्री कृष्ण उसमें पीपल के पत्ते पर सागर से निकल आएगा, या स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा, ऐसे तो नहीं होगा। श्री कृष्ण ने भी तो जन्म लिया होगा ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं, जब कृष्णपुरी थी तो कंसपुरी तो थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। बाबा क्या राज समझाते हैं, श्री कृष्ण का जितना नाम गाया हुआ है उनके बाप का तो नाम ही नहीं है, उनका बाप कहाँ है। जरूर राजा का बच्चा होना चाहिए ना श्री कृष्ण, क्योंकि ऐसे थोड़ी है जन्म लिया सागर के पत्ते पर, सागर में पत्ते पर और राजा बन जाएगा, तो जरूर उसका कोई पिता होगा, वो भी राजा होगा जिसके पास उसने जन्म लिया। तो बाबा कहते हैं अब उनके बाप का तो नाम नहीं, उनका बाप कहाँ है। श्री कृष्ण का तो कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं, उनका बाप कहाँ है। जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वो पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। अब श्री कृष्ण का जन्म कहाँ होगा, जिनका जो माता पिता होंगे वो तो थोड़ी कोई राजा वना पावन होंगे, फिर भी तो शरीर तो उस पुरानी इस दुनिया का ही होगा, तो वो परंतु वो पतित राजा होने कारण उनका नाम थोड़ी होगा। श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो या देवताएं जो जन्म लेंगे उसके जो माँ बाप होंगे वो थोड़ी पावन होंगे, वो देवताएं पावन होंगे, योग बल से पैदा होंगे, लेकिन वो कौन सी आत्माएं जन्म देंगी, जरूर संगम पर गई हुई आत्माएं, वही संगम से गई हुई आत्माएं, एडवांस पार्टी की आत्माएं, वही फिर जन्म देगी देवताओं को। तो बाबा कहते हैं पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा, श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वो बिल्कुल खलास हो जाते हैं पतित, तब वो गद्दी पर बैठता है। श्री कृष्ण गद्दी पर कब बैठेगा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण कब कहलाएंगे, जब फिर उस समय सब पतित खत्म हो गए। अपना राज्य ले लेते हैं तभी उनका संबत शुरू होता है, 111 संबत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संबत शुरू होगा ना, तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इतना समय इनका राज्य, सतयुग का कितना, त्रेता का कितना, तो इस समय तो देख मनुष्य, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती है। अब 1250 वर्ष लक्ष्मी नारायण, चलो 1250 वर्ष श्री राम श्री सीता, तो 2500 साल ही, तो फिर बाबा कहते इतनी तो, इतनी लाखों की वर्ष की तो बात ही नहीं है, तो जरूर कल्प की आयु बड़ी तो हो ही नहीं सकती है। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है, 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये भी तो अभी तक राज ही है ना, कौन होंगे उनके माता पिता श्री कृष्ण के, कैसा होगा, तो कई पूछते, हम कहते अभी वेट एंड सी, बाबा का अभी तो कई राज हैं जो पूरे खुले नहीं है, परंतु अभी बाबा कहते सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, पहले तो पुरुषार्थ तो करो, हम क्या बनेंगे वो तो वो सोचो ना, ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, बाबा कहते उसमें मत जाओ, वो वेट एंड सी, वो देखते रहना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुख्य बात तो यही है ना कि रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है और कोई चिंता नहीं, एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है, बस ये चिंता रखो। श्री कृष्ण कब आएगा कैसे होगा परिवर्तन, कौन माँ बाप होंगे, अभी उसकी चिंता मत करो। हाँ, बस हमको सतो प्रधान बनना है, उसकी चिंता करो। दूसरा, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, तभी तो हमारी भी पूजा होगी ना, इतनी इज्जत मिलेगी। लेकिन कब होगी, जब संगम पर इतनी सेवा करेंगे, भगवान आकर इतनी सेवा करता है तभी उनकी इज्जत है। तो आप युग में हम भी इतनी करेंगे तब तो हमारी भी इज्जत होगी, हम भी ऊंचे देवता बनेंगे, पूज्य बनेंगे। तो बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा बाबा के बच्चे बने, अधिकारी बने, तो वो अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम अधिकारी है ना, तो बाबा का ज्ञान गुण शक्तियाँ ये सब हमारे अधिकार में, हम बाबा से मांगते नहीं है, बाबा शक्ति दो, बाबा शांति दो, हम अधिकारी हैं इनके। तो बाबा कहते हैं, जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। ये अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। वो स्मृति आ जाती है, मैं कौन, मेरा कौन, तो ये सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, मांगो कुछ नहीं, बाबा मुझे थोड़ी शांति दो, नहीं, क्या हूं मैं, अधिकारी हूं मैं, तो वही शांत स्वरूप तो अधिकारी कहलाएंगे। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति से भी ऊपर, किसी भी वस्तु से लगाव नहीं। ये अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके लिए बाबा कहते हैं, अगर पवित्रता का नियम पक्का है, सुनो, अगर पवित्रता का नियम पक्का है, राखी बांधी है ना, तो पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। खाली पवित्रता नहीं, लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी ना हो, चिड़चिड़ापन भी एक विकार है, ये भी लगाव नहीं रखो कि ये होना ही चाहिए। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे और वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए पवित्रता के पिलर को पक्का करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। पवित्रता के पिलर को पक्का करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बाप दादा, दादियां, एडवांस पार्टी के सभी आदि रतन और वरिष्ठ भाई, जो कि कुछ एडवांस पार्टी में हैं, कुछ अभी साकार लोक में अनेक प्रकार की सेवाओं में सहयोगी हैं, और सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लौकिक में जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, बहनें और भाई उनकी कई प्रकार की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कई प्रकार के उनके मन में विचार होते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार एक विशेष महत्व रखता है। हम बाबा से कोई एक्सपेक्ट नहीं करते, बाबा हमको भरपूर करते हैं। तो आज के दिन हम सब मिलकर के अपने स्नेह की भावनाएं प्यारे बाबा को देंगे और उन्हीं भावनाओं के सूत्र में सदा बने रहेंगे। ब्राह्मण जीवन में हम सबका एक ही सूत्र है, बाबा और बाबा का प्यार, और बाबा के प्यार में ही बंधे हुए हैं। तो हम सब आज प्यारे बाबा को रक्षाबंधन के निमित्त भोग भी स्वीकार कराएंगे और अपने स्नेह की भावनाएं भी बाबा के सामने रखेंगे। और दूसरी बात, अधिकतर सभी भाई बहनों ने दो तीन दिन में राखी बंधवा ली थी। जिन्होंने अभी तक राखी नहीं बनी, जिनको मिली है वो छोड़ो, कल भट्टी वालों को मिल गई है, लेकिन जिनको ना राखी मिली है या ना बंधवाई, वो हाथ खड़ा करे। वो जो भी हैं सेवाधारी, जो भी हैं, 11 बजे वो इधर पांडव भवन के रिसेप्शन में पहुंचेंगे और वहां पर मंजू बहन और त्रिवेणी बहन राखी बांधेगी। तो इसलिए बाकी तो सबको बांध दिया था, और दिन को भी आज शांतिवन में 11 बजे से राखी का कार्यक्रम है। राखी के निमित्त बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा और वहां पर राखी का विशेष कार्यक्रम है। जिनको अपनी गाड़ी का साधन है वे अवश्य ही जा सकते हैं। तो अभी हम सभी प्यारे बाबा के पास चलते हैं। अभी आप देख रहे एक बहुत सुंदर राखी है, मम्मा बाबा, और बीच में राखियों में ही मम्मा बाबा को प्यार के सूत्र में अपने मन की भावनाएं रखी हैं, और साथ साथ राखी के लिए भी हम सब मिलकर के अभी बाबा को विशेष याद और भोग स्वीकार कराएंगे। और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, जैसा कि कल आपको बताया कि सभी भाई बहनों का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही होता है, वहां पर ही स्वीकार करना है। ओम शांति।
Thank you. दिव्य गुणों से सजी सजाई, भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी, पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई, भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई।
राखी बहना लाई,
राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई। राखी बहना लाई।
ओम शांति। आज राखी के शुभ अवसर पर ओम शांति। आज राखी के स्नेह भरे अवसर पर सबके यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में तो बहुत सी राखियां बहुत सुंदर सजी हुई दिखाई दे रही थी। कहां पर मोतियों की राखी, कहां पर लाइट, कहां पर भिन्न भिन्न डिजाइन की राखियां थी, और उन राखियों की लाइट से वतन में लाइट की जो चमक थी वो बहुत प्यारी और बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा दिखाई दिए। बाबा सब राखियों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची आज बच्चों ने वतन में अनेक राखियां भेजी हैं, लेकिन क्यों भेजी हैं? अब बाबा मेरे को पूछ रहे हैं क्यों भेजी हैं। मैंने कहा, बाबा हर एक के स्नेह की भावना है, कुछ ने स्नेह की, कुछ ने वायदों की और कुछ ने प्राप्तियों की, जो अनुभूतियां हुई हैं उसकी भावनाएं राखी के रूप में भेजी हैं। बाबा ने कहा कि जब से बाबा के बने ब्राह्मण जन्म लिया, तब से लेकर के बाबा ने बच्चों को ऐसी राखी, अटूट राखी बांधी है जो बच्चे किछ भी हो जाए, माया अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, लेकिन बाबा के स्नेह को, प्यार को भूल नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों ने स्नेह से राखी भेजी, बाबा उसे स्वीकार करते हैं। स्नेह में तो सब बच्चे बहुत ही भरपूर हैं, कुछ न कुछ कभी कभी थोड़ा बाबा से कई बच्चे स्नेह के साथ मीठे उलहने भी देते हैं, लेकिन बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है कि उलहनों में भी बच्चों का स्नेह समाया होता है। और फिर बाबा ने कहा, बच्चों ने वायदे अनेक किए हैं, अधिकतर सभी बच्चे उन्हीं वायदों मर्यादाओं पर पालन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी किन्हीं बातों में अलबेलेपन के कारण ढीला हो जाता है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चों ने तो राखी भेजी है, आज बाबा बच्चों को क्या देंगे। तो बाबा ने ना ऐसे एक बॉक्स रखा था और बाबा ने कहा, बच्ची ये बॉक्स खोलो। जैसे उस बॉक्स को खोला, उसके अंदर एक बहुत सुंदर सजी हुई राखी स्टाइल में एक बहुत क्रिस्टल टाइप और उसमें लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची देखो। मैंने कहा, बाबा ये तो बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा, अच्छा अभी बाबा आज सब बच्चों को ये देंगे। तो बाबा ने सब बच्चों को वतन में इमर्ज किया और वो बॉक्स बाबा ने बच्चों को दिया और बच्चों को कहा कि ये बॉक्स खोलो। जैसे वो बॉक्स खोलते थे, उसमें पहले एक स्टार निकलता था। वो स्टार जो है धीरे से आगे बढ़ते हुए सभी बच्चों के मस्तक के बीच में चमकते हुए सितारे की तरह वो दिखने लगा। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा बच्चों को कौन सा तिलक दे रहे हैं कि ऐसा तिलक लगे कि कोई भी बच्चों को देखे, बच्चों के चेहरे से फरिश्ता और बाप दादा का स्वरूप दिखाई दे। फिर दूसरा, वो जो राखी थी, उस राखी को जैसे ऊपर की ओर उठाया तो उसके जो दो धागे थे, एक धागे पर लिखा हुआ था संगम युग की लॉटरी श्रेष्ठ भाग्य, और दूसरे धागे पर लिखा था कि बाप के साथ सर्व संबंध और बाबा सर्व संबंधों में साथी। उसमें लिखा था एक धागे पर संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य की लॉटरी, दूसरे धागे पर लिखा था बाप के साथ सर्व संबंधों में बाप साथी। और बीच में क्या था, जो राखी थी, राखी के चारों तरफ ऐसे स्टार्स की तरह लंबे लंबे स्टार्स दिखाई दे रहे थे और बीच में बाबा, और बाबा मेरे दिल में, मैं बाबा के दिल में। जैसे उस समृति में रहते थे तो वो सभी स्टार्स के अंदर इतनी जबरदस्त लाइट निकलती थी, तो वो लाइट थी सर्व भाग्य सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का भाग्य और साथ साथ सर्व शक्तियां और सर्व गुण, इस प्रकार के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, आज बाबा जो बच्चों को विशेष राखी बांध रहे हैं, सदा ध्यान रहे संगम युग पर हमें श्रेष्ठ भाग्य की लॉटरी मिली है और संगम युग ही ऐसा है जहाँ बाबा के साथ, बाबा हम बच्चों के साथ सर्व संबंधों में सदा साथी हैं। भले बच्चे भूलते हैं, लेकिन बाबा किसी न किसी संबंध में उनको साथ देते हैं। और बाबा ने कहा, सदा बच्चों को अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है जो भी कोई देखे उसको फरिश्ते स्वरूप का या फिर बाप दादा के विशेष अनुभूति हो। और बाबा ने कहा, सदा इसी बात का ध्यान रखना है कि बाबा हमारा हर कार्य में हर संबंध में साथी है। तो सबके हाथ में वो बंध गई राखी और सबके हाथ से वो लाइट की किरणें निकल रही थी और उसी से ही बाबा का बहुत सुंदर राखियों से श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा, बच्चों ने स्नेह की भावना भेजी, अब स्नेह की भावनाओं के सूत्र में बाबा तो बंधा ही हुआ है, बाबा सदा साथी है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, भोग स्वीकार कराते बाबा ने भी सबका मुख मीठा कराते हुए भोग स्वीकार कराते हुए फिर से याद कराया कि बाबा सब बच्चों का सर्व संबंधों में सदा साथी हैं और संगम युग में श्रेष्ठ भाग्य की जो लॉटरी मिली है उसके गुण गाते खुशियों में झूमते रहे। सबको याद दिया ओम शक्ति।